आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो एवरीवन, टुडे वी विल बी लर्निंग क्लास 9 की इंग्लिश किताब मोमेंट्स का 8वां चैप्टर, जिसका नाम है हाउस इज नॉट अ होम। सो बेसिकली दिस स्टोरी रिफ्लेक्ट्स द चैलेंजेस ऑफ बीइंग अ टीनेजर एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रोइंग अप। हाउ डज द ऑथर कम्स ओवर ओवरकम्स हिज प्रॉब्लम्स। ओके, तो शुरू करते हैं। My first year of high school felt awkward. After leaving junior high at the head of my class with all the seniority the upper grade level could afford me, it felt strange starting over as a freshman. The school was twice as big as my old school, and to make matters worse, my closest friends were sent to a different high school. I felt very isolated. To is पर्टिकुलर पैरा में राइटर हमें ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कितनी उनको डिफिकल्टीज हुई थी जब उन्होंने अपना हाई स्कूल चेंज किया। आपको भी हुआ होगा राइट, कि फर्स्ट टू फोर्थ आप एक पर्टिकुलर स्कूल में थे, आपने एक डिफरेंट सेट ऑफ फ्रेंड्स बनाए थे अपने, एंड आफ्टर दैट व्हेन यू लीव दैट स्कूल एंड यू गो टू अ बिगर हाई स्कूल, एट दैट टाइम व्हाट वर द चेंजेस दैट यू पीपल फेस्ड, राइट? सो सेम थिंग हैड हैपेंड इन राइटर्स केस एज वेल। उनको बहुत ज्यादा फ्रेश, मतलब एक पर्टिकुलर फ्रेशमैन जैसे लगने लगा था, वो वाली फीलिंग थी उनको, एंड ही फेल्ट वेरी आइसोलेटेड क्योंकि उनके मोस्ट ऑफ द क्लोज फ्रेंड्स जो थे वो डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स में चले गए थे। आई मिस्ड माई ओल्ड टीचर्स सो मच दैट आई वुड गो बैक एंड विजिट देम। दे वुड एनकरेज मी टू गेट इन्वॉल्व इन स्कूल एक्टिविटीज सो दैट आई वुड मीट न्यू पीपल। दे टोल्ड मी दैट इन टाइम आई वुड एडजस्ट एंड प्रोबेबली एंड अप लविंग माई न्यू स्कूल more than I had my old one. They made me promise that when that happened, I would still come by and visit them from time to time. I understood the psychology in what they were saying, but I took some comfort in it nonetheless. मतलब यहाँ पे राइटर में ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको इतना ज्यादा अपने ओल्ड टीचर्स से भी वो मिस कर रहे थे कि वो अपने पुराने स्कूल जाके उनसे मिल गए, मतलब उनको उन्होंने मिले वो, ठीक है। एंड एट दैट टाइम उनके जो टीचर्स थे उन्होंने उनसे कहा, हमारे राइटर को, कि आप अपने नए स्कूल को भी आपको उतना ही लगाव होगा जितना, या फिर उससे ज्यादा, अपने नए स्कूल से आपको ज्यादा लगाव होगा जितना कि आपके पुराने स्कूल से है। वन संडे आफ्टरनून नॉट लॉन्ग आफ्टर आई हैड स्टार्टेड हाई स्कूल आई वॉज सिटिंग एट होम एंड आर डाइनिंग रूम टेबल डूइंग होमवर्क। इट वॉज अ कोल्ड एंड विंडी फॉल डे and we had a fire going in our fireplace. As usual, my red tabby cat was lying on the top of my all papers, purring loudly and occasionally sweating at my pen for entertainment's sake. मतलब राइटर यहाँ पे कह रहे हैं कि एक दिन ऐसे ही दोपहर, मतलब संडे की दोपहर होती है और राइटर अपना जो होमवर्क है वो कंप्लीट कर रहे होते हैं, एंड ऐसे ही मतलब फॉल का दिन होता है, मतलब सीजन होता है, बहुत ही कोल्ड वेदर होता है और राइटर के घर में एक फायर प्लेस होती है जहाँ पे फायर बर्न, मतलब आग जल रही होती है, और उनके कैट भी, रेड कैट जिसका नाम टैबी था, वो उनके साथ में बैठी हुई होती है। शी वॉज नेवर फार फ्रॉम मी, आई हैड रेस्क्यूड हर व्हेन शी वॉज अ किटन, एंड समहाउ शी न्यू दैट आई वॉज द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग हर द गुड लाइफ। राइटर यही कह रहे हैं यहाँ पे कि बहुत, जब वो किटन, मतलब वो बिल्ली जब बहुत ज्यादा छोटी थी तब उन्होंने उस बिल्ली को रेस्क्यू किया था, और उस बिल्ली को भी पता था कि वो बहुत कंफर्ट में है, बहुत ही कंफर्ट जोन में है जब वो हमारे राइटर के साथ है, ठीक है। सो माय मदर केप्ट स्टॉकिंग द फायर टू कीप द हाउस नाइस एंड वार्म। सडनली आई स्मेल्ड समथिंग स्ट्रेंज एंड देन आई नोटिस्ड इट, स्मोक पोरिंग इन थ्रू द सीम्स ऑफ द सीलिंग। द स्मोक बिगेन टू फिल द रूम सो क्विकली दैट वी कुड बेयरली सी। ग्रोपिंग आवर वे टू द फ्रंट डोर वी ऑल रैन आउट into the front yard. By the time we made our way outside, the whole roof was engulfed in the flames and it was spreading quickly. I ran to the neighbors to call fire department while I watched the mother to run back into the house. मतलब यहाँ पे क्या होता है, एक छोटा सा, मतलब छोटा नहीं, बहुत बड़ा हादसा हो जाता है कि राइटर के जो घर में जो फायर जल रही होती है वो इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उनका जो रूफ होता है जो कि लकड़ी का बना होता है वो फायर कैच कर लेता है, ठीक है। So my mother then ran out of the house carrying a small metal box full of important documents. She dropped the case on the lawn and in crazed state ran back into the house. I know what she after. My father had died when I was young and I was certain that she was not going to let his pictures and letters go up in the flames. They were the only things that she had to remember him by. Still screamed at her, "Mom, no!" मतलब यहाँ पे क्या होता है कि राइटर कहने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके फादर वो बहुत ज्यादा यंग थे तब चल बसे थे और उनकी मॉम क्या करती है उनकी माता जी कि वो बहुत तेजी से अंदर जाती हैं और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और कुछ जेवर होते हैं वो लेकर आती हैं ज्वेलरी वो रखती हैं वहां पे और फिर से अंदर जाती हैं क्योंकि बिकॉज राइटर के फादर बहुत ज्यादा पहले उनका देहांत होता है इसलिए उनके कुछ लेटर्स थे इंपॉर्टेंट और उनकी फोटोग्राफ्स थी तो उनकी माँ वो सारे फोटोग्राफ्स लाने अंदर दौड़ जाती हैं तो राइटर को ये अच्छा नहीं लगता सो ही स्क्रीम वो चिल्लाते हैं कि आप रुक जाइए डोंट डू दिस आई वॉज अबाउट टू रन आफ्टर हर व्हेन आई फेल्ट लार्ज हैंड होल्ड मी बैक इट वॉज अ फायरमैन आई हैडंट इवन नोटिस दैट द स्ट्रीट हैड ऑलरेडी फिल्ड विद द फायर ट्रक्स आई वॉज ट्राइंग टू फ्री माई सेल्फ फ्रॉम हिज ग्रैप्स yelling, you don't understand, my mother is in there. मतलब राइटर अंदर जा रहे ही होते हैं बच्चा वो छोटा तभी उनके जो फायरमैन होते हैं वो उनका हाथ पकड़ लेते हैं और वो नोटिस करते हैं राइटर की बहुत ज्यादा लोग और बहुत ज्यादा फायर ट्रक्स हैं वो रोड पे हैं और आग को बुझाने की कोशिश में लगे हैं राइटर उस फायरमैन को कहते कि आप समझ नहीं रहे हैं मेरी माँ अंदर है प्लीज लेट मी गो ही हेल्ड ऑन टू मी व्हाइल अदर फायर फाइटर्स रैन इन टू द हाउस He knew that I wasn't acting very logically and that if he were to let go, I'd run. He was right. It's all right, they'll get her, he said. मतलब होता क्या है कि राइटर उनको राइटर को भी पता होता है कि वो लॉजिकली बहुत ही मतलब सेंसिबली वो काम नहीं कर रहे हैं और इसलिए वो फायरमैन जो होता है वो राइटर का हाथ पकड़ लेता है सो दैट राइटर जो है हमारे लेखक वो अंदर ना जा सके वो छोटा बच्चा ठीक है और वो उनको अश्योर करता है कि आपकी माँ को हमारे जो बाकी के फायरमैन है वो बाहर ला देंगे He wrapped a blanket around me and set me down in our car. Soon after that, a fireman emerged from our house with my mom in tow. He quickly took her over to the truck and put an oxygen mask on her. I ran over and hugged her. All those times I have ever argued with her and hated her vanished at the thought of losing her. मतलब राइटर यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कहने की कि उनकी माँ जो थी वो बेहोश हो जाती है क्यों क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्मोक होता है बहुत ज्यादा मतलब धुआं होता है जो उनके अंदर चला गया होता है उनके लंग्स में तो फायरमैन जो होता है वो उनको लाता है ट्रक में बिठाते हैं और उनको क्विकली ऑक्सीजन मास्क लगाते हैं और राइटर बहुत ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि वो बहुत छोटे थे तब और उनको सारी चीजें याद आ जाती है जितनी की मतलब उन्होंने अपनी माँ को जब गुस्सा आने के बाद कही हुई होती है वो और उनको डर लगता है कि कहीं वो अपनी माँ को खो ना दे She is going to be okay, said the fireman. She just inhaled a little smoke. And then he ran back to fight the fire while my mother and I sat there dazed. I remember watching my house burn down and thinking that there was nothing I could do about it. मतलब राइटर बहुत ज्यादा परेशान मतलब हताश हो जाते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि अपना हाउस जो है उनका घर जल रहा होता है और वो कुछ नहीं कर सकते थे फायरमैन उनको अश्योर करता है कि आप अपनी माँ की चिंता ना करें उन्होंने बस थोड़ा सा स्मोक जो है इनहेल किया है एंड वो कुछ देर बाद ठीक हो जाएंगी सो 5 hours लेटर द फायर वॉज फाइनली आउट अ हाउस वॉज ऑलमोस्ट कम्प्लीटली बर्न बट वेन इट स्टक मी आई हैडन्ट सीन माई कैट वेयर वॉज माई कैट मच टू माई हॉरर आई रियलाइज दैट शी वॉज नो वेयर टू बी फाउंड देन ऑल एट वंस इट हिट मी द न्यू स्कूल द फायर माई कैट I broke down in tears and cried I was suffering loss big time to writer ko yahan pe ye realize hota hai ki unki jo billi thi wo kahin gayab ho gayi thi is sare bheed mein theek hai kyun kyunki wo bahut choti hoti hai billi aur unko sab kuch yaad aane lagta hai ki unka naya school fir unka ghar ka jalna unki billi aur wo bahut zyada depressed ho jate hain aur bahut zyada rote hain wo chota bachcha the fireman wouldn't let us go back into the house that night It was still too dangerous. Dead or alive, I couldn't imagine leaving without knowing about my cat. Regardless, I had to go. We piled into the car with just the clothes on our backs and few of the fireman's blankets. I made our way to my grandparents' house to spend the night. तो राइटर क्या करते हैं कि उनको बस अपनी बिल्ली के बारे में जानना होता है कि वो जिंदा भी है या मर गई मतलब जल के मर गई या फिर वो जिंदा है फिर भी उनके पास कुछ ऑप्शन नहीं होता क्योंकि वो फायरमैन तो उनको अंदर जाने का परमिशन नहीं दे रहे होते हैं तो वो क्या करते हैं अपने बच्चे कुछ क्लोथ्स लेके और बाकी की सारी जो डॉक्यूमेंट्स है वो वगैरह लेके अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं अपनी कार में। द नेक्स्ट डे मंडे आई वेंट टू स्कूल। व्हेन द फायर ब्रोक आउट आई वाज स्टिल वेयरिंग द ड्रेस आई हैड वॉर्न टू चर्च दैट मॉर्निंग बट आई हैड नो शूज। आई हैड किक्ड देम ऑफ व्हेन आई वाज डूइंग माय होमवर्क। दे बिकेम येट अनदर कैजुअलिटी ऑफ द फायर। सो आई हैड टू बोरो सम टेनिस शूज फ्रॉम माय आंट। व्हाई कुडंट आई जस्ट स्टे होम फ्रॉम स्कूल। माय मदर वुडंट हियर ऑफ इट बट आई वॉज टोटली एम्बेरेस्ड बाई एवरीथिंग। द क्लोथ्स आई वॉज वेयरिंग लुक्ड वियर्ड। I had no books or homework and my backpack was gone. I had my life in that backpack. The more I tried to fit in, the worse it got. Was I destined to be outcast and a geek of all my life? That's what I felt like. I didn't want to grow up, change or have to handle life. It was going to be this way. I just wanted to curl up and die. Writer yahan pe ye keh rahe hain ki jab wo chote bacche the और ये सब इंसिडेंट हुआ तो वो बहुत ज्यादा खतरनाक और बहुत ज्यादा भयानक इंसिडेंट था। क्यों? क्योंकि उनके सारे जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें थी वो उस फायर में चली गई थी, यहां तक कि उनके शूज भी। उनको छोटे छोटे चीजों के लिए अपनी आंट पे डिपेंडेंट होना पड़ता था, उनकी मौसी के ऊपर, है ना। और वो ये भी रियलाइज करते हैं तब कि नया स्कूल, उन्होंने एडमिशन नए स्कूल में लेने के बाद उनकी लाइफ बहुत ज्यादा चेंज हो गई होती है। क्यों? क्योंकि उनका जो बैकपैक होता है जिसमें वो सारी चीजें भर रहे होते हैं, उसके साथ भी बहुत सारी यादें भी उनकी उस बैकपैक में जमा हुई होती हैं, जो कि अभी उस फायर में सब कुछ उनका जलकर राख होता है। उनकी मेमोरीज, उनके बिलोंगिंग्स, तो आप इमेजिन कर सकते हो बच्चों कि छोटी छोटी चीजें जो है हमारे लाइफ में, दे मैटर अ लॉट। आई वॉक्ड अराउंड द हाउस लाइक अ ज़ॉम्बी। एवरीथिंग फेल्ट सरल एंड आई वाजंट श्योर व्हाट वाज गोइंग टू हैपन। All the security I had known from my old school, my friends, my house and my cat had all been ripped away. तो राइटर ये कहते हैं यहाँ पे कि एज अ छोटा बच्चा, छोटा बहुत ही मतलब एज अ यंग किड, वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं इन सारे इंसिडेंट्स में, क्योंकि उनके जो सारे बिलोंगिंग्स हैं, यहाँ तक कि उनका पुराना स्कूल भी उनसे बहुत दूर जा चुका होता है, उनके फ्रेंड्स भी दूर जा चुके होते हैं, और यहाँ तक कि उनका हाउस और उनकी बिल्ली जो थी छोटी, वो जो उनसे बहुत ज्यादा क्लोज थी, वो भी उनसे जा चुकी होती है, उनसे दूर। तो ये बहुत ही ज्यादा ट्रॉमा जैसा होता है उनके लिए, क्योंकि वो बहुत छोटे थे तब, तो उनको ये सारी चीजें डाइजेस्ट करना बहुत डिफिकल्ट जाता है। व्हेन आई वॉक थ्रू व्हाट आई यूज्ड टू बी माय हाउस आफ्टर स्कूल दैट डे आई वाज शॉक्ड टू सी हाउ मच डैमेज देयर वाज। व्हाटएवर हैडन्ट बर्न वाज डिस्ट्रॉयड बाय द वाटर एंड केमिकल्स दे हैड यूज्ड टू पुट आउट द फायर। The only material things not destroyed were the photo albums, documents and some other personal items that my mother had managed to heroically rescue. But my cat was gone and my heart ached for her. तो राइटर यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे वो अपने, मतलब एक दिन क्या होता है, वो अपने स्कूल से आ रहे होते हैं और वो अपने घर की तरफ जाते हैं ये देखने के लिए कि कितना क्या क्या बचा है क्या नहीं बचा। तो वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं जब वो ये देखते हैं कि उनका घर बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका होता है फायर की वजह से, और उससे भी ज्यादा जो केमिकल्स जो लोगों ने, मतलब वो फायर फाइटर्स ने जो केमिकल्स यूज किए थे आग को बुझाने के लिए, उन सारी चीजों से भी सारी की सारी उनके जो कुछ बिलोंगिंग्स होते हैं जैसे कि फर्नीचर वगैरह, वो सब कुछ डैमेज हो चुका होता है, उनका फूड मटेरियल वगैरह, ठीक है। और बस कुछ थोड़ी ही चीजें बची हुई होती हैं, और वो होती है फोटो एल्बम्स और कुछ डॉक्यूमेंट्स जो उनकी माँ ने अंदर जाके बाहर निकाले थे, है ना। और उनको इस भी चीज की बहुत ज्यादा तकलीफ होती है कि उनकी बिल्ली भी उस फायर में नहीं बच सकी जिसको वो बहुत ज्यादा केयर करते थे। There was no time to grieve. My mother rushed me out of the house. We would have to find a place to live and I would have to go buy some clothes for school. We had to borrow money from my grandparents because there were no credit cards, cash or even any identification to be able to withdraw money from bank. Everything had gone up in smoke. तो राइटर हमें यहाँ पे ये कह रहे हैं कि उनको कैसे बेसिक नेसेसिटीज जो होती है उनकी, जैसे कि कपड़े या फिर खाना या फिर घर फॉर दैट मैटर, वो भी उनके लिए किस तरह से वो आग जो है उस आग ने उनसे छीन लिया होता है, और उनके पास बेसिक चीजें भी नहीं होती, यहाँ तक कि उनका आइडेंटिफिकेशन भी उनके पास नहीं होता कि वो सारी चीजें इस तरह से जल के राख हुई होती हैं। That week, the rubble that used to be our house was being cleared off the lot. Even though we had rented an apartment nearby, I would go to watch them clear away debris, hoping that my cat was somewhere to be found. She was gone. I kept thinking about her as that vulnerable little kitten. In the early morning, when I would disturb her and get out of bed, she would tag along after me, climb up my robe and crawl into my pocket to fall asleep. I was missing her terribly. तो यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि उन्होंने एक नया अपार्टमेंट वो लोग रेंट पे लेते हैं क्योंकि घर भी तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, राइट? वो ऐसे ही लोगों के पास अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहना अच्छा नहीं लगता. और फिर राइटर नोटिस करते हैं कि वो अपने बिल्ली को कितना ज्यादा मिस कर रहे हैं. उनको याद आ जाती है फिर वो सारी चीजें अपनी बिल्ली को लेके, कि कैसे वो उसको जब वो सोती है तब वो उसको डिस्टर्ब कर रहे होते हैं पहले, एंड फिर वो जब भी राइटर वहां से निकलने के बाद वो बिल्ली उनके पीछे पीछे आती थी, कैसे वो उनके पॉकेट में सो जाया करती थी, वो सारी चीजें राइटर के दिमाग में रन होने लगती है. इट ऑलवेज सीम्स दैट बैड न्यूज स्प्रेड क्विकली एंड इन माई केस इट वॉज नो डिफरेंट. Everyone in high school, including teachers, was aware of my plight. I was embarrassed, as if somehow I were responsible. What a way to start off a new school. This was not the kind of attention I was looking for. तो राइटर ये कह रहे हैं कि उनको सारे लोग सिंपति देने के लिए मतलब ईगर होते हैं, बट राइटर को ये पसंद नहीं होता है. क्यों? क्योंकि ये वाला अटेंशन उनको नहीं चाहिए होता है, ऐसा मतलब किसी के बहुत ही स्पेशल अटेंशन और उनको कोई सिंपति से देखे, उनकी कोई मतलब उनके लिए सॉरी फील करे, पिटी फील करे, ये सब चीजें राइटर को अच्छी नहीं लगती. द नेक्स्ट डे एट स्कूल पीपल वर एक्टिंग इवन मोर स्ट्रेंज देन यूजुअल. आई वॉज गेटिंग रेडी फॉर जिम क्लास एट माई लॉकर. पीपल वर मिलिंग अराउंड मी आस्किंग मी टू हरी अप. आई थॉट इट स्ट्रेंज बट इन द लाइट ऑफ द पास्ट फ्यू वीक्स नथिंग वुड सरप्राइज मी. इट ऑलमोस्ट सीम्ड दैट दे वर ट्राइंग टू शो मी इनटू द जिम. Then I saw why. There was a big table set up with all kinds of stuff on it, just for me. They had taken up collection and bought me school supplies, notebooks, all kinds of different clothes, jeans, tops, sweatsuits. It was like a Christmas. I was overcome by emotion. People who had never spoken to me before were coming up to me to introduce themselves. I got all kinds of invitation to their house. मतलब राइटर यहाँ पे बहुत वार्म फील करते हैं. क्यों? क्योंकि उनके जो फ्रेंड्स होते हैं वो उनको इतनी सारी चीजें देते हैं, क्योंकि मतलब जो भी नेसेसिटीज होती हैं चीजें, जैसे कि नोटबुक या फिर जीन्स या फिर कपड़े, जो भी हैं वो उनको देने के लिए सारे के सारे उनके दोस्त जो है बहुत हैप्पीली आगे आ जाते हैं. तो राइटर बहुत अच्छा फील करते हैं ये सारी चीजें देखकर. देयर जेन्युइन आउटपोरिंग कंसर्न रियली टच्ड मी. इन दैट इंस्टेंट I finally breathed a sigh of relief and thoughtful for the first time that things were going to be okay. I made friends that day. तो वो जो बच्चा है वो फ्रेंड्स बनाने के लिए बहुत ज्यादा हेजिटेट होता था, उसको बहुत ज्यादा डर लगता था. उसके क्लासमेट्स के एक एक्ट ने, मतलब एक उनके एक इंसिडेंट ने वो सारी हेजिटेशन उनके मन से निकाल दी. वो बहुत ज्यादा खुशकिस्मत समझने लगे अपने आप को. क्यों? क्योंकि ऐसे सारे दोस्त उनके आसपास है, ऐसे लोग उनको पहचानते हैं और ऐसे दोस्त और ऐसे लोगों के साथ उनकी जान पहचान ही नहीं बल्कि बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है. अ मंथ लेटर आई वॉज एट माई हाउस वॉचिंग देम रीबिल्ड इट, बट दिस टाइम इट वॉज डिफरेंट. आई वॉजंट अलोन. आई वॉज विथ टू ऑफ माई न्यू फ्रेंड्स फ्रॉम स्कूल. इट टुक अ फायर फॉर मी टू स्टॉप फोकसिंग ऑन माई फीलिंग्स ऑफ इनसिक्योरिटी एंड ओपन अप टू ऑल द वंडरफुल पीपल अराउंड मी. Now I was sitting there watching my house being rebuilt when I realized my life was doing the same thing. तो राइटर यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा अमेज होते हैं ये सारी चीजों में से. क्यों? क्योंकि एक फायर होती है, मतलब एक फायर का जो इंसिडेंट होता है वही होता है उनके लाइफ में, बट बहुत सारी चीजें उनके लाइफ में बदल चुकी होती हैं. अभी वो बहुत अच्छे दोस्त भी बना लेते हैं जो कि उनको अपना उनका हाउस रीबिल्ड करने में मदद भी करने के लिए आगे आ जाते हैं. When we sat there on the crumb, planning my new bedroom, I heard someone walk up to me from behind and say, "Does this belong to you?" When I turned around to see who it was, I couldn't believe my eyes. A woman was standing there holding my cat. I leaped up and grabbed her out of the woman's arms. I held her close to me and cried into that beautiful orange fur. She purred happily. My friends were hugging me, hugging the cat and jumping around. तो राइटर हमें यहाँ पे ये कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा एक सुंदर इंसिडेंट उनके साथ होता है कि उनकी बिल्ली जो है वो उनको वापस मिल जाती है और एक वुमन उनके पीछे आ रही, मतलब उनके पीछे होती है जो उस बिल्ली को लेके राइटर के पास यानी कि उस छोटे बच्चे के पास आती है। राइटर बहुत ज्यादा खुश होते हैं एज अ वेरी स्मॉल किड, बहुत ज्यादा खुश होते हैं वो और अपनी बिल्ली को हग करते हैं वो और खुशी के आंसू उनसे आ जाते हैं, उनकी आंखों से आ जाते हैं। Apparently, my cat had been so freaked by the fire that she ran over a mile away. Her collar had our phone number on it, but our phones had been destroyed and disconnected. This wonderful woman took her in and worked hard to find out whose cat it was. Somehow, she knew this cat was loved and sorely missed. तो क्या होता है कि उन्होंने क्या किया होता है, जो बिल्ली होती है उसके गले में एक पट्टा वो बांध उन्होंने पहले बांध रखा होता है और उसपे उन्होंने अपना फोन नंबर लिखा होता है। जब फायर ऐसे ब्रेक आउट हो जाती है तब वो उनकी बिल्ली जहां रास्ता मिले वहां पे शी जस्ट रन्स ऑफ। एंड ये जो औरत होती है, जो लेडी, वो बहुत ज्यादा अच्छे दिल की होती है। शी वॉज काइंड हार्टेड एंड बिकॉज ऑफ विच शी मेक्स ऑल द अटेम्प्ट टू फाइंड कि उसके ओरिजिनल ओनर कौन है। और दैट्स हाउ वो जो औरत है वो राइटर के पास कनेक्ट, मतलब राइटर का उनको पता मिल जाता है एंड देन शी कम्स अप टू द राइटर एंड वो बिल्ली जो है उनको पास उनको दे देती है। एज आई सेट देयर विथ माई फ्रेंड्स एंड माई कैट कर्ल्ड अप इन माई लैप, ऑल द ओवरवेलमिंग फीलिंग्स ऑफ लॉस एंड ट्रेजेडी सीम टू बी डिमिनिश। आई फेल्ट ग्रेटिट्यूड फॉर माई लाइफ, माई न्यू फ्रेंड्स, द काइंडनेस ऑफ स्ट्रेंजर एंड द लाउड पर ऑफ माई बिलवड कैट। माई कैट वॉज बैक एंड सो आई वॉज। तो यहाँ पे हमारे जो राइटर है वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सारी चीजें, मतलब एक फायर जो आने के बाद उनकी सारी चीजें जो डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है, उनका घर, उनके बिलोंगिंग, वो सारी चीजें उनको जैसे ऐसे लगता है कि वो सारी चीजें वापस आ रही है। क्यों? क्योंकि उनके बिल्ली के साथ ही उनका नया घर जो मतलब पहले जैसे बस रहा होता है और सारी चीजें जो पहले कभी नहीं होती थी उनकी लाइफ में वो फिर से आना शुरू हो जाती है। यहाँ तक कि वो अपने नए स्कूल को भी, उनको अपनी टीचर्स की बातें याद आ जाती है यहाँ पे कि उनके टीचर्स ने भी उनसे कहा था कि यू विल लव योर न्यू स्कूल इन द सेम वे लाइक यू डिड योर ओल्ड स्कूल। तो ऐसे इस तरह से राइटर एक फायर जिन्होंने उनका सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया था, वही फायर वो फायर का उनको अभी ज्यादा उतना तकलीफ नहीं होती। क्यों? क्योंकि सारी चीजें उनके पास वापस से आ जाती हैं, इंक्लूडिंग द कैट। तो बच्चों ये था हमारा चैप्टर और इसके साथ ही शुड वी लर्न अबाउट द न्यू इंग्लिश वर्ड्स दैट वी हैव लर्न, हम उनका मतलब जान लेते हैं जो कि आपके लेसन के लास्ट में दिया गया हुआ है, ठीक है? तो स्टॉकिंग द फायर का मतलब है फीडिंग एंड टेंडिंग द फायर। ज़ोंबी का मतलब है अ डल एंड एपेथेटिक पर्सन। सरल का मतलब है स्ट्रेंज या फिर बिजार, यानी कि बहुत ही ज्यादा गंदी आप कह सकते हो या फिर ऑकवर्ड। और मिलिंग अराउंड का मतलब है मूविंग इन एन एमलेस मैनर। और शोव का मतलब है पुश हार्ड। तो फिनिशिंग दैट ग्लॉसरी, लेट अस लुक इनटू द क्वेश्चंस। हमें यहाँ पे 6 क्वेश्चंस हैं और टॉक अबाउट इट का 1 है, तो हम ये 7 क्वेश्चंस सॉल्व कर लेते हैं, ओके? और रोज की तरह मैं क्या करूंगी, आपको एक आउटलाइन दे दूंगी लाइन उस आंसर की, मतलब क्वेश्चन रीड करके मैं आपको उसका मतलब समझाऊंगी। आई विल गिव यू द आउटलाइन ऑफ द आंसर एंड देन यू विल हैव टू राइट द आंसर इन योर ओन वर्ड्स इन योर नोटबुक, ओके? सो लेट अस स्टार्ट विद इट। द फर्स्ट क्वेश्चन, What does the author notice one Sunday afternoon? What is his mother's reaction? What does she do? तो राइटर यहाँ पे सवाल के जो तीन हिस्से किए गए हुए हैं, संडे आफ्टरनून को राइटर क्या नोटिस करते हैं, उनकी माँ का क्या रिएक्शन होता है और वो क्या करती है, तो आपको मैं उसका आउटलाइन दे देती हूँ। सो द ऑथर वाइल डूइंग हिज होमवर्क नोटिस द स्मोक पोरिंग इन थ्रू द सीम्स ऑफ द सीलिंग। The room was filled with the smoke very quickly. The author and his mother ran outside to save their life. His mother ran out of the house with a small metal box full of important documents. She became so crazy that she rushed back to the house just after dropping the box. ये है इस सवाल का आउट, इस ये जवाब का आउटलाइन है ये। आपको फिर से उसको रिकंस्ट्रक्ट करना होगा, ओके? So let us go to the question number 2. Why does he break down in tears after the fire? So the author's house was completely burned down. 5 hours later, when the fire was finally put out, he realized at once that his cat was nowhere. He had to face the loss of old school, his house, and the cat. In such a state, he cried and broke down in tears. Okay? So, aate hai hamare question number 3 pe. Why is the author deeply embarrassed the next day in the school? Which words show his fear and insecurity? तो यहाँ पे सवाल ये पूछने की कोशिश कर रहा है कि राइटर को अशेम्ड या फिर अपने आप पे तरस क्यों आता है, अपने आप वो अशेम्ड बहुत ज्यादा क्यों फील करते हैं, शर्म उनको क्यों आती है, और कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से उनके वर्ड्स उनकी इनसिक्योरिटी को शो करते हैं. तो द ऑथर वॉज फुल ऑफ रिमोर्स एज ही वॉज लेफ्ट विथ नथिंग. ही डिडंट हैव प्रॉपर ड्रेस एंड स्टडी मटेरियल. ही हैड नो बैकपैक. ही हैड द फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी. All things appear strange to him. He was shocked deeply and seemed frustrated. So, the words uttered by him was I destined to be outcast and geek all my life? I didn't want to grow up, change or have to handle the life. If it was going to be this way, I just want to curl up and die. रिवील हिज फियर एंड इनसिक्योरिटी. मतलब राइटर के ये सारे जो वर्ड्स हैं कि उनको ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए, वो वर्ड्स राइटर का फियर और इनसिक्योरिटी डिफाइन कर लेती हैं. आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे. द कैट एंड द ऑथर आर वेरी फॉन्ड ऑफ ईच अदर. हाउ हैज दिस बीन शोन इन द स्टोरी. वेयर वॉज द कैट आफ्टर द फायर. हु ब्रिंग्स इट बैक एंड हाउ. सो द ऑथर लव्ड हिज कैट वेरी मच. He never considered her far from him. She kept sitting beside him when he did his homework and other household work. When the author found his cat back, his happiness was beyond the limits. He grabbed her quickly and felt relieved. This proved that they were very fond of each other. The cat ran over a mile away when the house was on fire. A strange lady brought it back as there was a phone number written on the collar of the cat. Let us go on to the question number 5. What actions of the schoolmates changed the author's understanding of life and people and comfort him emotionally? How was his loneliness vanish and how does he start participating in life? So iska jawab hai, his schoolmates bought up the school supplies, notebook, all kind of different clothes for the author in order to help him. It was a matter of surprise and too difficult to believe for him. He got emotional satisfaction. People who had never spoken introduced themselves one by one. All things seemed new and created his interest in life. Now he had all the things, whatever he used to have. He started enjoying his life as usual. So, aate hain hamare question number 6 pe. What is the meaning of my cat was back and so I was? Had the author gone anywhere? Why does he say that he is also back? तो ये बहुत ही ज्यादा philosophical सवाल है यहाँ पे, जिसके बारे में आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है. Okay? So I'll give you the outline. Here, the author wants to point out that life without affection is useless. He was depressed after a great loss in all fields. His old school and teachers were always in his mind. The fire had reduced his house to ashes. His cat was also not with him. In such circumstances, he considered himself dead and had no interest in life. In the end, as soon as the conditions took the turn, he felt relieved. Now he had all the things with him. The author had not gone anywhere. It was his state of mind. मतलब उनकी जो दिमाग की जो स्थिति है वो ही बस हिल गई होती है because of all these losses. He recovered from his gloomy state and started enjoying life. When he got his cat back, मतलब एक बिल्ली के आने के बाद उनकी लाइफ जो थी वो बहुत पहले से ज्यादा बहुत सिमिलर हो गई थी, जस्ट विद दैट वन इंसिडेंट ऑफ गेटिंग हिज कैट बैक. तो यहाँ पे एक और सवाल लिखा गया हुआ है जो आपको सॉल्व करना है. हैव एनी ऑफ योर क्लासमेट्स और स्कूलमेट्स हैड एन एक्सपीरियंस लाइक द वन डिस्क्राइब्ड इन द स्टोरी वेयर दे नीडेड हेल्प. डिस्क्राइब हाउ दे वर हेल्प. तो आपको यहाँ पे ये लिखना है कि कैसे आपके क्लासमेट्स को या फिर आपको अगर मदद की जरूरत होती है तो क्या आपको उस वक्त मदद मिली थी या नहीं? क्योंकि बच्चों इस लेसन में हमने ये देखा कि कैसे राइटर जो है एज अ छोटा बच्चा उनको अपने नए स्कूल में एडजस्ट होने के लिए बहुत ज्यादा वक्त लगता था, बट एक फायर, एक इंसिडेंस उनके लाइफ में होता है कि उनका घर जल जाता है और उनकी सारी जो एसेंशियल चीजें हैं वो उनसे दूर जाती हैं, और इसी के साथ कैसे उनके नए फ्रेंड्स उनके लाइफ में वापस से एंट्री ले लेते हैं। सो दिस वन इंसिडेंट शोज कि आपके लाइफ में भले ही कितनी ही डिफिकल्टी क्यों ना हो, अगर आपको हेल्प करने से सामने से अगर लोग आ जाते हैं तो आपकी जिंदगी वापस से इट कैन कम बैक टू ओरिजिनल लाइफ अगेन। सो आपको यही आपके लाइफ में अगर ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो यू विल हैव टू जॉट इट डाउन इन योर नोटबुक्स, एंड दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। थैंक यू सो मच।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।